HD Smartcast। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है रेडियो नशा प्रोडक्शन।
मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट शो क्रेजी फॉर किशोर में।
ये है क्रेजी फॉर किशोर।
मैं आपको बताऊंगा बप्पी लहरी के कैरियर की शुरुआत के बारे में, साथ ही बात करूंगा आइकॉनिक सॉन्ग पग घुंघरू बांध के रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ बप्पी ने सत्यनारायण मिश्रा जी से इस गाने के कुछ हिस्से गाने की रिक्वेस्ट की। बप्पी लहरी के कौन सा गाना था जिनको सुन के बाबा बहुत इमोशनल हो गए थे। जब बप्पी लहरी 19 साल के हुए तो वो मुंबई आ गए। उनको 1972 में एक बंगाली फिल्म दादू का म्यूजिक कंपोज करने का मौका मिला और 1973 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी के लिए म्यूजिक कंपोज किया और इसी फिल्म से शुरू हुआ बाबा और बप्पी लहरी का एसोसिएशन। बप्पी लहरी के कैरियर का पहला टर्निंग पॉइंट ताहिर हुसैन साहब की फिल्म जख्मी थी। इस फिल्म में उन्होंने मोहम्मद रफी और बाबा के साथ एज ए प्लेबैक सिंगर नथिंग इज इम्पॉसिबल गाना भी गाया। उनकी पहली म्यूजिकली हिट फिल्म थी चलते चलते। इस फिल्म ने उनको बॉलीवुड में एस्टेब्लिश कर दिया और इस फिल्म के लिए बाबा ने फिल्म के टाइटल ट्रैक के लिए अपनी आवाज दी। ये गाना सुनते ही हर कोई ठिरकने लगता है। इस गाने के लिए बाबा को 1982 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन जब बप्पी लहरी ने बाबा को ये कॉम्पोजिशन सुनाई तो बाबा ने बप्पी से कहा कि इस कॉम्पोजिशन में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसके साथ कोई क्लासिकल सिंगर ही जस्टिस कर सकता है। बप्पी ने बाबा को मनाने की कोशिश की पर बाबा ने उनसे कहा कि वो नहीं चाहते कि बप्पी का कॉम्पोजिशन के साथ इनजस्टिस हो। बाबा की इस इंटेंशन और ऑनेस्टी को देख कर बप्पी बाबा से रिक्वेस्ट करने लगे, आप ये गाना मत छोड़े, मैं क्लासिकल वाले पार्ट किसी और से रिकॉर्ड करवा दूंगा। तब जाकर बाबा इस गाने के लिए कन्विंस हुए। बप्पी ने इस गाने की क्लासिकल पार्ट को सत्यनारायण मिश्रा जी से रिकॉर्ड करवाया। 1987 से 1994 तक उन्होंने मुझे म्यूजिक की तालीम दी और इसके लिए गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बप्पी ने इस गाने के क्लासिकल वाले पार्ट को सत्यनारायण मिश्रा जी से रिकॉर्ड करवाया। ऐसा कई बार होता है कि लोग काम पाने के लिए झूठ का सहारा ले या अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक चले जाए, पर बाबा इस सोच के बिल्कुल ऑपोजिट थे। अगर उन्हें कभी भी ये लगता था कि वो किसी गाने के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे तो वो भी झिझक होके कंपोजर से सीधा बोल देते थे कि ये गाना किसी और सिंगर को गाना चाहिए। इतनी ऑनेस्टी बाबा जैसे रेयर आर्टिस्ट में ही हो सकती है। वैसे तो बप्पी के मैक्सिमम गाने पेपी नंबर थे और उन्हें डिस्को किंग भी कहा जाता था। लेकिन बप्पी ने कुछ ऐसे गाने भी कंपोज किए हैं जो ना सिर्फ क्लासिकल कंपोजिशन पर बेस्ड हैं, बल्कि सीरियस और सोलफुल भी हैं। ऐसे ही कुछ गाने बाबा ने बप्पी के लिए गाए हैं। बप्पी ने मुझे एक बार बताया कि फिल्म चलते चलते का गाना कभी अलविदा ना कहना की रिकॉर्डिंग के बाद जब बाबा ने ये गाना सुना तो उनके आंखों में आंसू आ गए। ऐसा ही कुछ हुआ फिल्म एहसास का एक गाना सपनों के शहर के रिकॉर्डिंग के बाद। बाबा इन गानों को सुनने के बाद बहुत इमोशनल हो गए थे और उन्होंने बप्पी से कहा कि ये दो गाने हमेशा सुनने वालों के दिलों में अमर रहेंगे। जैसा बाबा ने कहा था वैसा ही हुआ। इनफैक्ट कभी अलविदा ना कहना गाना तो इतना पॉपुलर हुआ कि करण जौहर ने इसी टाइटल पर एक फिल्म भी बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार्स ने काम किया। बाबा ऐसे ही कई गानों की वजह से सालों से हम सबके बीच में हैं और आने वाले कितने ही सालों तक हमारे साथ रहेंगे। स्टे हैप्पी स्टे क्रेजी माय फ्रेंड्स। अब आप सबसे अलविदा कहने का वक्त आ गया। फिर लेके आऊंगा बाबा की यादों से जुड़ा आप सबका फेवरेट शो क्रेजी फॉर किशोर। और हाँ, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये था रेडियो नशा प्रोडक्शन
HD Smartcast।
150 years of breakthroughs, milestones, and triumphs. 150 years of Children's National Hospital. 150 years of generous community support. You can give kids a future where they get freckles instead of chemotherapy and paper cuts instead of surgery. Children's National Hospital. 150 years stronger with your help. please give today. Visit childrensnational.org/150years. That's childrensnational.org/150years.